अरमान ने सोचा उसे आस्था को उसके दादाजी के बताने से पहले खुद बता देना चाहिए। अभी अरमान आस्था को कुछ कहना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त अविनाश वहां आ गया। उसने आस्था की ओर देखते हुए कहा, गौरी, एक्चुअली मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अविनाश का इतना सीरियस टोन में बोलना था कि सभी थोड़ा घबरा गए। आस्था तुरंत बोली, क्या बात है, सब ठीक है ना? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बताइए ना अविनाश भैया, क्या हुआ है? और दादाजी तो ठीक है ना? ये बोलकर आस्था जल्दी से अंदर जाने लगी। आस्था को घबराया हुआ देखकर सभी इस वक्त मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा, गौरी, दादाजी बिल्कुल ठीक हैं, एक्चुअली मैं आप सबसे कुछ और कहना चाहता हूँ। सभी कन्फ्यूज होकर अविनाश को देखने लगे थे। तभी नानी माँ आगे आईं और बोली, क्या बात है बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? सब ठीक तो है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो बताओ, हम अभी उसका निवारण कर देंगे। तभी अविनाश बोला था, नहीं नानी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं, अविनाश ने नरम स्वर में कहा। फिर आस्था की ओर देखते हुए बोला, गौरी, तुम भी घबराना मत और ना ही ज्यादा सोचो। बात बस इतनी है कि दादाजी चाहते हैं कि जब तक हमें यहाँ और कुछ वक्त रुकना है, तब तक हम रघुवंशी मेंशन में शिफ्ट हो जाएं। ये सुनते ही आस्था के चेहरे पर हैरानी छा गई, उसकी आंखें फैल गईं और वो तुरंत बोली, क्या, लेकिन दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आलोक जी भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने अविनाश की ओर देखा और बोले, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या भाई साहब को यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ हुई है, या फिर कल रात जो बुरा सपना आया था उसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं? दादाजी की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए, खासकर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान। एक साथ अरमान की तरफ देखने लगे। अरमान ने तुरंत उन चारों की टिकी हुई नजरें खुद पर महसूस कर ली। उसने भौहें चढ़ाकर उन सबको एक ठंडी और चेतावनी भरी नज़र से देखा। उसके उस एक गोल्ड लुक का असर ऐसा हुआ कि चारों ने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमा ली, मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। तभी वंशिका ने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन अविनाश भैया, आप लोग वहां क्यों जाना चाहते हैं? यहां तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मिनी हॉस्पिटल है, 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं, हर तरह की व्यवस्था है। ऐसे में अचानक रघुवंशी मेंशन जाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वंशिका का सवाल सुनकर अविनाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वंशिका, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल दादाजी आज भी अपने पुराने विचारों और संस्कारों के साथ जीते हैं। भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा विदेशों में बिताया हो, लेकिन आज भी उनके मन में यही सिद्धांत है कि बेटी के घर ज्यादा दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। ये गौरी का घर है, इसलिए वो यहां अधिक समय तक रुकना नहीं चाहते। अविनाश की बात सुनकर नानी माँ तुरंत बोल पड़ी, अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम अभी जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जिस घर वो जाने की बात कर रहे हो, वो घर भी तो आस्था बिटिया का ही है, तुमने ही तो उसे गिफ्ट किया है, फिर यहां रहने में कैसी परेशानी? नानी माँ की बात सुनकर अविनाश के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी उनसे बिल्कुल यही बात कही थी नानी माँ, लेकिन आप जानती हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। अविनाश हल्का सा हंसा और बोला, उन्होंने कहा कि वो घर उन्हें उनके मायके वालों ने गिफ्ट किया है, उसमें ससुराल वालों का कोई रोल नहीं है, और उनके हिसाब से असली घर तो वही होता है जहां ससुराल वाले अपने हक से रहें। बस पता नहीं कहां कहां से ऐसे तर्क ले आते हैं। ये सुनते ही नानी माँ ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और बोली, अरे बिटवा, ये सब तो हमारे जमाने की बातें हैं, लगता है भाई साहब दिल से अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और कहा, हालांकि एक बात कहूं, उनकी सोच पर मुझे गर्व भी होता है। आज के समय में भी जो इंसान रिश्तों की मर्यादा और संस्कारों को इतना मान देता हो, वो सच में बहुत बड़ा दिल रखता है। हमारे भी कभी ऐसे ही ख्याल थे, लेकिन हमारी गोरी बिटिया है ना, ये हमें अपने से दूर जाने ही नहीं देती, हमें हमेशा अपने पास ही रखना चाहती है और बेकार में हमें पाप का भागीदार बना रही है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश थोड़ा चौंक कर तुरंत बोल पड़ा, आप कैसी बातें कर रही हैं नानी माँ, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था, और वैसे भी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपने दादाजी की सोच तो नहीं बदल पाया, लेकिन मैं आपको जरूर मौका देना चाहूंगा, हो सकता है कि आप उनकी हमउम्र हों और उनकी सोच बदल दें। ये सुनकर आस्था भी आगे आई और नानी माँ को गले लगाकर बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकती नानी माँ, आप में ही तो हमारी जान बसती है। ये सुनकर नानी माँ मुस्कुरा दी और बोली, बस बस, इतनी सुबह सुबह हमको इमोशनल वा करोगे क्या तुम लोग? आहान फ्री टाइम में नानी माँ को कुछ इंग्लिश के शब्द भी सिखा दिए थे, हालांकि वो प्राइवेसी को प्रवेसी ही बोलती थी और अभी भी ठीक तरीके से इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, लेकिन आहान तुरंत ही उनकी कही हुई बातें समझ जाया करता था। वो फटाफट बोला, नानी माँ, इमोशनल वा नहीं होता, इमोशनल होना होता है। अरे हाँ हाँ, वही मुआ, इमोशनल वा, नानी माँ ने मजाकिया अंदाज में कहा। सभी नानी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। फिलहाल आस्था ने तुरंत कहा,
मैं अभी दादाजी से मिलती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो यहाँ से कहीं ना जाएं। यहाँ हर तरह की सुख सुविधा है, डॉक्टर मौजूद है और दादाजी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आस्था अरमान को देखकर बोली, अरमान जी आप कहेंगे तो वो जरूर रुक जाएंगे। जैसे ही आस्था ने अरमान से उम्मीद भरी नजरों से कहा, अरमान थोड़ा सा चौंक गया और बोला, आस्था अगर तुम्हारे दादाजी जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ, वैसे भी बड़ों की बातों की इज्जत करनी चाहिए। ये कहकर अरमान फोन आने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। अब तो आस्था का दिल और दिमाग हैरानी से भर गया। वो सोचने लगी कि आखिर अरमान जी को क्या हो गया है। उसे अच्छी तरह याद था कि एक बार जब राधिका ने उसकी शादी सुमित से होने से पहले वहां से जाने की बात की थी और आस्था रो रही थी, तब अरमान ने राधिका को डांटकर वहीं रुकने का आदेश दे दिया था, क्योंकि वो आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। और आज जब आस्था खुद अरमान से कह रही थी कि वो उसके दादाजी को रोक लें, उन्हें जाने ना दे, तो वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। आस्था कहीं ना कहीं अजीब शक का शिकार हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसने अपने दिल और दिमाग में उठ रहे सभी सवालों को कुछ समय के लिए दबा दिया। लेकिन तब तक आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही हैरानी से अरमान को वहां से जाते हुए देख चुके थे। तभी सुमित ने आकाश के कान में धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है, आखिर अरमान आस्था के दादाजी से इतना क्यों बच रहा है, क्या कारण हो सकता है उसके इस तरह व्यवहार करने का। तभी आकाश बोला, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तुमने देखा नहीं जब हमने उससे सवाल किया तो उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम सबसे छिपाया जा रहा है। तभी अचानक आकाश का फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन उठाकर कान से लगाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश के चेहरे की हालत देखकर सुमित घबराकर बोला, क्या हुआ आकाश, किसका फोन था और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, लेकिन फौरन में जहां मैं रहा करता था वहां एक लेडी थी जिनका नाम मिसेस मार्था थी। मेरी माँ की मौत के बाद कई महीनों तक उन्होंने मुझे सहारा दिया था, वो भी तब जब मेरे पिता को मुझसे कुछ लेना देना नहीं था। मिसेस मार्था ने मुझे उस दर्द से बाहर निकलने और मजबूत बनने में मदद की थी, उसके बाद ही मैं इंडिया वापस आया था।
आज जैसे ही मैं सफल हुआ मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी मुझे एक सर्वेंट का फोन आया है कि मिसेस मार्था की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और यूं कहो कि अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। मुझे आज ही उनके पास निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता, और वैसे भी उनकी आखिरी इच्छा है कि उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा माना था। मैं भले ही कुछ महीनों तक ही उनके साथ रहा, लेकिन उन महीनों में हमने बहुत अच्छा समय साथ बिताया था। जैसे ही आकाश ने मायूसी से ये सब कहा, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से खड़े रह गए। रश्मि की आंखें तुरंत भर आईं, उसने आगे बढ़कर आकाश के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, हम भी आपके साथ चलेंगे आकाश जी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, और वैसे भी वो अस्पताल में भर्ती हैं, पता नहीं उनकी तबीयत ठीक होने में कितना समय लगे, जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती हम उनके साथ ही रहेंगे। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आकाश ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। तभी नानी माँ थोड़ी सी घबराहट के साथ बोली, लेकिन बेटा बच्चा अभी बहुत छोटा है, इतनी लंबी दूरी का सफर उसके लिए ठीक रहेगा क्या। नानी माँ की चिंता सुनकर अविनाश हल्का सा मुस्कुराया और बेहद भरोसे भरे स्वर में बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नानी माँ, हम सब संभाल लेंगे, और सबसे ज्यादा मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा, वैसे भी हम किसी कमर्शियल फ्लाइट से नहीं बल्कि अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, प्राइवेट जेट में पूरी प्राइवेसी और आराम होता है, वहाँ का माहौल बिल्कुल घर जैसा होता है, बच्चे को किसी तरह की भीड़, शोर शराबे या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर भी हमारे साथ रहेंगे, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आकाश की बात सुनकर नानी माँ के चेहरे पर धीरे धीरे तसल्ली के भाव उभर आए। उन्हें महसूस हो गया था कि बच्चे की सुरक्षा को लेकर जितनी चिंता उन्हें है उससे कहीं ज्यादा चिंता उसके माता पिता को है। नानी ने रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, वाकई बिटिया तुम अब काफी समझदार हो गई हो। तभी आलोक जी आगे आए और बोले, आकाश बेटा अगर बात उनकी है जिन्होंने तुम्हें बचपन में सहारा दिया था तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए बेटा, उनका तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है और तुम्हें वो कर्ज हर हाल में चुकाना चाहिए। तभी आस्था आगे बढ़कर रश्मि को गले से लगाते हुए बोली, हम आपको बहुत मिस करेंगे रश्मि दीदी। ये सुनकर रश्मि की आंखें भी हल्की सी नम हो गई थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी।